लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, आज समाज में मानव परिवार का टूटना एक साधारण बात हो गई है। परिवार में आपसी अनबन, लड़ाई झगड़े और नासमझी, जिसके कारण परिवार की संपत्ति का बंटवारा, जहां हम एक परिवार के सदस्यों को अपने ही प्रिय जनों से अलग और दूर होता पाते हैं। आज की सामाजिक परिस्थिति में परिवारों के टूटने के कई कारण हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में इसका मुख्य कारण मानव में व्याप्त स्वार्थ की भावना को देखता हूँ। मानवीय स्वार्थ का तात्पर्य सिर्फ अपने बारे में सोचने से है, जहाँ हम किसी व्यक्ति को सारी बातों में अपने हित की मनोभावना को पाते हैं, जिसमें उसके नाम की महिमा और बड़ाई होती हो। मानव में व्याप्त स्वार्थपूर्ण भावना को हम अपने पहले पुरखों में पाते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर से भी बड़ा, सुंदर और बुद्धिमान होने के लोभ में पड़ जाते, जिसके कारण वे ईश्वर द्वारा दी गई निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए पाप के शिकार हो जाते हैं। श्रोताओं, स्वार्थ हर मानव के व्यक्तित्व में समाहित है, जिसके फलस्वरूप वह उन चीजों को करता जो उससे अच्छी और लुभावनी लगती हैं। आज परिवारों के टूटने का एक बड़ा कारण यही है कि स्वार्थ की पूर्ति में हम अपने से बड़ों या बुजुर्गों की बातों को अनदेखी करते हैं, बजाय अपनी इच्छा तथा रुचि के अनुरूप उन चीजों को करते हैं जो हमारे लिए पतन का कारण बनती हैं। मानव का अपने स्वार्थ के कारण अपनों की बातों को नहीं सुनना आज हमारे परिवारों में बिखराव का कारण बना है। श्रोताओं, 23वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु में आज हम मानव समाज में अपनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व की चर्चा सुनते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं को अपने व्यक्तिगत जीवन से अवगत करें कि हम अपने रोजमर्रे के जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस भांति करते हैं। क्या हम में स्वार्थ की भावना व्याप्त है, जिसके कारण हम स्वयं को अपनों से अपनी क्षणिक खुशी के लिए अलग करने की चाह रखते हैं। क्या हम अपनों के विकास हेतु उत्तरदायी हैं? अपने परिवार के लोगों की छोटी बड़ी त्रुटियों के सुधार हेतु हम किस तरह का मार्ग अपनाते हैं?
यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने ऊपर दूसरों की जिम्मेदारी लेने की कृपा प्रदान करे, जिससे हम अपने भले कार्यों के द्वारा दूसरों की मदद करते हुए उन्हें उनकी खामियों से बाहर निकलने में मदद कर सकें, जो हमारे परिवारों को टूटने से और समाज को बिगड़ने से बचाए रखता है। श्रोताओ, नबी इज़ेकियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए इस बात की चर्चा करता है कि ईश्वर ने हमें विवेक और बुद्धि प्रदान की है और इस कृपा के द्वारा वे हमें एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होने का आह्वान करते हैं। ईश्वर हमें दुष्ट लोगों को उनकी गलतियों के लिए फटकारने और उन्हें सचेत करने को कहते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण और खतरे से भरा कार्य लगता है। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के बदले लोग यह कहते हुए कन्नी काट लेते हैं कि दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी ठीक नहीं है, लेकिन लोगों की बुराई और खामियों को जानते हुए भी यदि हम उन्हें कुछ नहीं कहते, सुधार के लिए मदद नहीं करते, तो यह हमारे लिए बुराई और दंड का कारण होता है। हम अपनी उदासीनता के लिए स्वयं को ईश्वर की निगाहों में दोषीदार बनाते हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता में बिना किसी सुधार की चुनौती दिए मर जाता तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले मूक दर्शक उसके मृत्यु के भागीदार होते हैं। श्रोताओ, ईश्वर ने हमें भला और नेक बनाया है और उनकी चाह हमसे यही है कि हम अपने उन अच्छे सुंदर गुणों के द्वारा न केवल अपने में अच्छा रहें, बल्कि दूसरों को अच्छा और भला होने में मदद करें। वे हमें अपने सुंदर गुणों को जिस समाज में हम रहते साझा करने को कहते हैं, जिससे समाज में सुख शांति व्याप्त रहे और सबों की भलाई हो सके। अतः बुराई को बढ़ने से रोकने हेतु हर मानव का यह कर्तव्य है कि हम दुष्ट को फटकारें और सही मार्ग में आने की उसे चुनौती दें। हमारा ऐसा करना व्यक्ति में सुधार लाता तो हम व्यक्ति और समाज दोनों को बचा लेते हैं, और यदि व्यक्ति में कोई सुधार नहीं होता तो वह इसका जिम्मेदार खुद होता है। वहीं अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में हम अपने को दोषीदार होने से बचा लेते हैं। श्रोताओ, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे इस कार्य को पड़ोसी प्रेम के रूप में संक्षिप्त करता है। अपने पड़ोसी को प्रेम करने का अर्थ हमारे लिए उसकी चिंता करना और उसकी भलाई हेतु कार्य करना है। जहाँ हम उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते और बुरे कार्यों के लिए उसे फटकारते हुए उसमें सुधार लाने का सुझाव देते हैं। यह हमारे जीवन में किसी के लिए तब होता है जब हम सच्चे अर्थ में उस व्यक्ति को प्रेम करते और उसकी उन्नति की चाह रखते हैं। हमारा अपने पड़ोसों के प्रति ऐसा पेश आना स्वयं हमारे विकास और जीवन के प्रति हमारी सच्ची और अच्छी समझ का हाल प्रस्तुत करता है। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में हमने स्पष्ट रूप से मानव समाज में हमारे उत्तरदायित्व और कर्तव्य का जिक्र सुना। हमारे परिवार और समाज में शांति तब बनी रहती है जब हम एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हुए स्वार्थहीन रूप में हर किसी की भलाई और अच्छाई की चिंता करते हैं। सुसमाचार हमें भ्रातृत्व की भावना में किसी के गलती करने पर उसमें सुधार लाने के सुझावों का जिक्र करता है। सुधार हेतु धर्म ग्रंथ के ये मापदंड हमें और हमारे समाज को एकता तथा शांति में बने रहने हेतु मदद करते हैं। आज की विकट और संवेदनशील परिस्थिति में जब हम स्वयं अपने में धैर्य और सहनशीलता की कमी का अनुभव करते हैं, हमें अपनों को क्षमा करने का आह्वान दिया जाता है। आज हमारे परिवारों का टूटना और समाज में बिखराव दिन ब दिन इसलिए आई है क्योंकि हम सही अर्थ में एक दूसरे को क्षमा करने में अपने को असहज पाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने उदाहरण से सीखने को मदद करें, जहां उन्होंने क्रूस के काट से घोर दुख और कष्ट की स्थिति में होते हुए भी अपने शत्रुओं के पापों को क्षमा कर दिया, जिससे हमारे परिवारों में शांति और ईश्वरीय प्रेम बना रहे।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। चाहता दूसरा बिगाल देना, एक मील कोई ले जाए जब संग दो मील साथ में जाना, एक गाल पे कोई मारेगा चाहता दूसरा बिगाल देना।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सिनट के संचालकों ने कहा है कि ख्रिस्त एकता जागरण प्रार्थना जो 30 सितंबर को होगी, इसके तुरंत बाद सिनट महासभा की शुरुआत होगी, जो सिनट प्रक्रिया में सिनोडालिटी और ख्रिस्त एकता वर्धक वार्ता के बीच संबंध में प्रार्थना की केंद्रीयता पर जोर देगी। ख्रिस्त एकता जागरण प्रार्थना ईश प्रजा के दो मौलिक आयाम, प्रार्थना की केंद्रीयता एवं वार्ता के महत्व पर प्रकाश डालेगी, ताकि हम ख्रिस्त में भाईचारा एवं एकता के रास्ते पर एक साथ आगे चल सकें। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी प्रेस सम्मेलन में सिनोडालिटी पर धर्म सभा के महासचिवालय के उप सचिव सिस्टर नथानाइल बेकूर्द ने बतलाया कि जागरण प्रार्थना दुनिया में एकता और शांति के लिए प्रतिबद्धता की मुख्य विषय वस्तु पर जोर देगी और सभी ख्रिस्तों की एकता के लिए प्रार्थना के महत्व को प्रकट करेगी, जबकि सिनोड को पवित्र आत्मा को समर्पित करेगी। सिस्टर नथानाइल ने प्रकट किया कि जागरण प्रार्थना में विभिन्न ख्रिस्त समुदायों के 12 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें कुस्तुनतुनिया के ख्रिस्त एकता प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो प्रथम और कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्पे भी शामिल हैं। पोप फ्रांसिस भी उपस्थित होंगे। धर्म सभा में भाग लेने वाले कई गैर कैथोलिक बंधुत्व के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जागरण प्रार्थना में युवाओं की भी एक विशेष भूमिका होगी, जो एक साथ एकत्रित होने की पृष्ठभूमि पर रोम में होंगे। यह पहल तेजे के प्रधान ब्रदर अलोइस के सिनट के दौरान ख्रिस्त एकता मिलन के रूप में एक साथ होने के सपने से प्रेरित है, ताकि ख्रिस्त में प्राप्त एकता को मनाया और दृश्यमान किया जा सके। युवा मिलन समारोह में करीब 40 देशों के 3000 युवा प्रतिनिधि रोम में एकत्रित होंगे। पोप फ्रांसिस 11 सितंबर को भारत में मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी परमाध्यक्ष बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यू तृतीय से मुलाकात करेंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि संत पापा के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के बाद परमाध्यक्ष बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यू तृतीय ख्रिस्त एकता को बढ़ावा देने के लिए गठित परमधर्म पीठ विभाग का दौरा करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने ब्राजील में उन समुदायों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है, जो इन दिनों भारी वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। ब्राजील में साइक्लोन का कहर जारी है। इस चक्रवात ने दक्षिण ब्राजील को तबाह कर दिया है। कई शहरों में बाढ़ आ गई है। इसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने पोप फ्रांसिस की ओर से एक ताज संदेश में लिखा, संत पापा फ्रांसिस रियो ग्रांडे दु सुल के उन समुदायों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करना चाहते हैं जो भारी वर्षा से तबाह है। उन्होंने लिखा कि संत पापा अपने पिता तुल्य स्नेह से उन क्षेत्रों के धर्माध्यक्षों को अपनी प्रार्थना का आश्वासन देते हैं। वे मौत के शिकार लोगों की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते और बेघर लोगों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से याचना करते हैं कि पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र संभव हो। पोप फ्रांसिस ने परिवारों के प्रोत्साहन के लिए गठित संघ मैरिज एनकाउंटर के 1200 सदस्यों से शनिवार को वैटिकन के पौष अष्टम सभागार में मुलाकात की। उन्हें संबोधित कर संत पापा ने कहा, यीशु के प्रेम की आज्ञा से प्रेरित होकर आपने स्वयं को विवाह के संस्कार और धर्म सामाजिक जीवन की पुनः खोज के लिए प्रतिबद्ध किया है। संत पापा ने संघ को प्रोत्साहन देते हुए कहा, इसलिए मैं आपको उदारता एवं जुनून के साथ अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने का प्रोत्साहन देता हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर वैश्विक यूनेस्को सम्मेलन में संत पापा फ्रांसिस ने 3 चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्तियों और समाजों के लिए साक्षरता के मूल्य को रेखांकित किया। शिक्षा में साक्षरता की प्रत्येक व्यक्ति के विकास में एक बुनियादी और केंद्रीय भूमिका होती है और समग्र रूप से अधिक साक्षरता टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संत पापा फ्रांसिस ने यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे ओजाले को वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो परोलिन द्वारा उनकी ओर से भेजे गए एक संदेश में यह व्यक्त किया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित विश्व सम्मेलन में भाग लेने वालों को शुभकामनाएं भेजी। संत पापा फ्रांसिस ने इस दिवस को मनाने और वर्ष के चुने हुए विषय पर विचार करने के लिए दुनिया भर में राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलों में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। इस वर्ष का विषय है बदलती दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। संत पापा ने कहा, शिक्षा में साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के विकास में, समुदाय में और उनके सामंजस्यपूर्ण एकीकरण में और समाज की उन्नति में उनके सक्रिय और प्रभावी भागीदारी में एक बुनियादी और केंद्रीय भूमिका है। संत पापा ने कहा, परम धर्म पीठ विशेष रूप से साक्षरता के पक्ष में यूनेस्को के प्रयासों को महत्व देता है और आर्थिक एवं व्यवहारिक जरूरतों को जवाब देते हुए मूल रूप से लोगों को उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक बुलाहट के स्तर पर बढ़ावा देने और विकास करने के उद्देश्य से है। संत पापा ने 3 चुनौतियों का जिक्र किया, शांति को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और समग्र पारिस्थितिकी के लिए साक्षरता। उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि प्रकृति का विनाश फेंकने वाली संस्कृति से निकटता से जुड़ा हुआ है जो समकालीन जीवन की अधिकांश विशेषता है, इसका मतलब धैर्य और दृढ़ता के साथ जीवन के लिए अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने को बढ़ावा देना होगा। अंत में संत पापा ने उन पर, उनके सहयोगियों और साक्षरता को जवाब देने में शामिल सभी लोगों पर ज्ञान, खुशी और शांति के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए संदेश समाप्त किया। उधर मोरोको के माराकेच क्षेत्र में 8 सितंबर को स्थानीय समय अनुसार रात 11:11 पर 7 तीव्रता वाले भूकंप की 30 सेकंड की नाटकीय अवधि थी, जिससे लगभग 630 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोपीय संघ मोरोको का समर्थन करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में G20 बैठक भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान के साथ शुरू की, शिखर सम्मेलन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं मोरोको में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी प्रार्थना है कि सभी घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भारत इस कठिन समय में मोरोको को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।